अध्याय 36 कुटुंब में आर्थिक व्यवस्था। प्रभु चाहता है कि उसके लोग विचारशील और सावधान हों। उसकी इच्छा है कि वे प्रत्येक बात में मितव्ययी होकर उड़ाऊपन से बचे रहें। आपको सीखना चाहिए कि कब बचत करें अथवा कब व्यय। यदि हम अपने आप को नकारकर क्रूस ना उठावें तो मसीह के अनुगामी नहीं हो सकते। जैसे जैसे हम आगे बढ़ें, पूरा पूरा भुगतान करते चलें, अपनी बुनाई में प्रत्येक गिरे हुए को उठाते चलें, अपनी वस्त्र के लटकने वाले छोरों को, जिनके कहीं उलझने की संभावना है, बांध लें और अपनी अपनी विसात के भीतर सीख लें। अपनी वासना तृप्ति में व्यय किया जा रहा है, वो भर को सुंदर एवं सुडौल एवं सुविधाजनक बनाने में व्यय हो सकता है। आप अपने तथा अपने भाइयों के प्रति विश्वास योग्य बनिए और कंजूसी न करिए। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी वस्तु एकमात्र जिह्वा को संतुष्ट करने तथा भोग विलास की क्षुधा मिटाने में व्यर्थ लाई जाती है। अति व्ययो भी एक दुरुपयोग है। छोटे छोटे खर्च, जिन पर आप विचार भी नहीं करते, अंत में जोड़े जाकर भारी रकम बन जाते हैं। छोटे छोटे वस्त्र एवं भोजन पदार्थों पर न्याय करने की परीक्षा जब सामने आवे तो प्रभु यीशु के उस महान बलिदान स्वयं त्याग पर विचार कीजिए जो उसने पतित मनुष्य के निमित्त किया। हमारे बच्चों को स्वयं त्याग एवं बलिदान की और आत्मा शासन की शिक्षा देनी चाहिए। उनका धर्माध्यक्ष और कर्मचारी आर्थिक मामलों में कठिनाई का सामना इस कारण करना पड़ता है कि वे अपनी इच्छा, भूख और इच्छा पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। अनेकों का दिवालिये होकर बेईमानी के साधन काम में लाने का कारण यही है कि वे अपनी पत्नी और बच्चों की अति व्ययी रुचियों की पूर्ति करने में फंस जाते हैं। माता पिता को अपने बालकों को अपने आदेश और शिक्षा द्वारा सुयोग्य आर्थिक व्यवस्था का पाठ सिखाना चाहिए। हम तो मसीह के दीन अनुयायी हैं, इससे बढ़कर धनी होने का दावा नहीं करना अति उत्तम है। यदि हमारा पड़ोसी अपने घरों को ऐसा बनावे व समाज जैसा हमारी हैसियत नहीं है तो हम बेचैन न हों। जब हम अपनी वासना तृप्ति के लिए या मेहमानों को खुश करने के लिए सामान जुटाएं तो मसीह हमारे सामान को किस दृष्टि से देखेगा? इस प्रकार स्वयं दिखाऊपन करना अथवा अपने बालकों को करने देना एक फंदा है। कोई उपयोगी वस्तु फेंकी ना जाए, इसके लिए निरंतर सावधानी, बुद्धिमानी व दूरदर्शिता की आवश्यकता है। मेरा अनुभव है कि छोटी छोटी बातों में बचत न करने के कारण अनेकों कुटुंब अपनी आवश्यक वस्तुओं को एकत्रित न करके पीड़ित हैं। किसी मनुष्य के कर्जदार न हो, कई कुटुंब तो इस कारण धनहीन है कि वे धन पाते ही उड़ा देते हैं। कमाने के पूर्व किसी राशि को किसी अभिप्राय से पृथक करना एक जाल है। बाइबल के अनुसार मसीही कहलाने वाले में सच्ची ईमानदारी की आशा करने का संसार को अधिकार है। यदि एक सदस्य दान का अपना भाग देने में अविश्वासी निकले तो भय है कि समस्त समाज अविश्वासी गिना जावे। धार्मिकता का दावा करने वालों को चाहिए कि वे जिस सत्य को मानते हैं उसका आदर करें और अपने निकम्मे व्यवहार से उसे कलंकित न होने दें। प्रेरित कहता है, अनेकों अनेक ने अपनी आय के भीतर अपने व्यय करने का पाठ नहीं सीखा है। वे अपने को परिस्थिति के अनुकूल बचाना नहीं सीखते। हरेक को अपनी व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए कि ऋणी होने का अवसर ही न आवे। यदि कोई ऋण में फंस जावे तो वह समझ ले कि वह शैतान के एक फंदे में फंसा है जो उसने उस व्यक्ति के आत्मा के लिए लगाया है। मन में ठान लीजिए कि दूसरी बार ऋण न लूंगा, चाहे हजार वस्तुओं का इनकार करना पड़े, पर ऋणी कदापि नहीं होना चाहिए। चेचक की तरह इससे बचना चाहिए। आवश्यक बातों की उपेक्षा करना मितव्ययता नहीं, शरीर की उपेक्षा करने व उसका ऐसा दुरुपयोग करना जिससे परमेश्वर की सेवा योग्य न रहना परमेश्वर का अनादर करना है। प्रत्येक गृहस्थ का यह प्रथम कर्तव्य है कि शरीर के लिए पौष्टिक एवं स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था करे। भोजन वस्तु में कमी करने की उपेक्षा सजावट सामग्री एवं वस्त्र में कमी करना भला है। अनेकों गृहस्थ अपने कुटुंब को परिमित खाद्य वस्तु देते हैं कि अतिथि सत्कार के लिए खर्चीली वस्तुएं एकत्रित कर सके। यह अनुचित है। पहुनाई में तो मनुष्य का व्यवहार साधारण होना चाहिए। कौटुंबिक आवश्यकता को प्रथम स्थान दिया जावे। नकली रीति रस्म और बुद्धिहीन मित व्ययता द्वारा मनुष्य उन आशीषों से वंचित रह जाता है जो साधारणतः पहुनाई करने के द्वारा प्राप्त हो सकती है। हमारे दैनिक भोजन में ऐसी गुंजाइश हो कि कभी कोई अतिथि हमारे घर आ जावे तो गृहिणी पर बिना अधिक भार डाले उसकी भोजन व्यवस्था हो जावे। आर्थिक सुव्यवस्था का अर्थ कंजूसी नहीं, पर अपनी आय के अनुसार बुद्धिमानी पूर्ण ऐसा व्यय करना है कि कारोबार ठीक ठीक चल जावे, क्योंकि एक भारी काम किया जाना है। परमेश्वर की यह इच्छा नहीं है कि मनुष्य उन वस्तुओं से वंचित रहे जो उसके स्वास्थ्य और आराम के लिए आवश्यक हैं, परंतु वह इन बातों की स्वीकृति नहीं चाहता कि मनुष्य दिखाऊ अतिव्ययी एवं विलासी हो। बालकों को शिक्षा निमित्त माता पिता का कर्तव्य। बालकों को शिक्षा दी जावे कि जो कुछ उनका है इस पर परमेश्वर का अधिकार है। कोई वस्तु भी अधिकार मुक्त नहीं है। उनके पास जो है वह केवल धरोहर है जिसके द्वारा वे अपना आज्ञाकारी होना प्रमाणित कर सकते हैं। धन एक आवश्यक भंडार है, इसे उन पर व्यय न कीजिए जिन्हें आवश्यकता नहीं। किसी को आपके स्वेच्छादान की आवश्यकता है। यदि आप अतिव्ययी हैं तो शीघ्र ही ऐसी आदत को मिटा दीजिए। ऐसा न करने से आप अनंत काल तक दिवालिये रहेंगे। इस युग में स्वाभाविक रूप में युवक की ये प्रवृत्ति होती है कि वह आर्थिक सुव्यवस्था को कंजूसी या संकीर्णता समझकर उसकी अवहेलना करने लगता है, परंतु आर्थिक सुव्यवस्था का संबंध विस्तृत एवं उदार मनोभावों से होता है। बिना व्यवहार सच्ची उदारता मूल्यहीन है। छोटे छोटे कणों का सदुपयोग करके आर्थिक सुव्यवस्था का अध्ययन करना अपनी मर्यादाहीनता का परिचय नहीं समझना चाहिए। प्रत्येक युवक एवं बालक को शिक्षा दी जावे कि वे केवल कल्पित समस्याओं को ही हल न करें, वरन अपने आय व्यय का ठीक ठीक हिसाब रखें। पैसे का उपयोग करके उसका सदुपयोग सीखें। बालकों को शिक्षा दी जावे कि अपने कमाए हुए अथवा माता पिता के दिए हुए पैसे से अपनी पुस्तकें, वस्त्र अथवा अपनी उपयोगी वस्तुएं चुनना और मोल लेना सीखें, और अपने व्यय का हिसाब रखने से वे रुपये पैसा का मूल्य तथा उपयोग सीखेंगे, जिसे वे किसी और रीति से नहीं सीख सकते। बालकों को बुद्धिहीन परामर्श भी दिया जा सकता है। वे बालक जो अपनी शिक्षा का खर्च उठाने के लिए काम करते हैं, पैसे का मूल्य उनकी अपेक्षा अधिक समझते हैं, जिनका भार माता पिता स्वयं उठाते हैं। जब तक हमारे बालक असह्य बोझ बन जावे, उनका भार न उठाया जावे। जब तक युवक जो शारीरिक योग्यता रखते हैं प्रयत्नशील परिश्रमी होने का अनुभव कर ले, तब तक उसे किसी उद्योग के लिए प्रशिक्षण देने निमित्त उदारता से अर्थ व्यय करके माता पिता अपने कर्तव्य पालन में भूल करते हैं। पत्नी एवं माता में यदि कुशलता एवं चतुरता का अभाव हो और वह अपनी लालसा पूर्ति में व्यस्त हो जावे, तो ऐसा करने से उसके भंडार का क्षय हो जाएगा। माता तो यही सोचेगी कि वह ठीक मार्ग पर होकर उचित व्यय कर रही है, क्योंकि उसे पहले गृहस्थी चलाने में अपनी तथा बालकों की आवश्यकताओं पर प्रतिबंध लगाने की शिक्षा नहीं मिली। ऐसे परिवार को दो गुने धन की आवश्यकता होती है, जबकि उसी धन से और एक परिवार का प्रतिपालन हो सकता है। परमेश्वर की प्रसन्नता इसमें हुई कि व्यर्थ व्यय होने के दुष्परिणाम मेरे समक्ष रखे, कि मैं माता पिताओं को अपने बच्चों के लालन पालन के निमित्त दृढ़ मित व्यय होने का परामर्श दे सकूं। बच्चों को सिखलाइए कि अनावश्यक वस्तुओं पर व्यय करना धन का दुरुपयोग करना है। धन के संबंध में पति पत्नी को परामर्श। सबको हिसाब रखना सीखना चाहिए। कई लोग इसे अनावश्यक समझकर लापरवाह रहते हैं, यह अनुचित है। प्रत्येक व्यय को ठीक ठाक लिखना चाहिए। यदि अपने बीते दिनों में उचित बचत की हो तो आज आपके पास वह साधन होगा जिससे आप किसी आवश्यकता की पूर्ति तथा परमेश्वर के कार्य की मदद कर सकते हैं। प्रति सप्ताह आप अपनी आय से कुछ बचावें और यथार्थ आवश्यकता अथवा परमेश्वर के काम के लिए दान देने के सिवाय अन्य किसी बात में उसे व्यय न करें। यदि आप व्यर्थ व्ययी होकर अपनी आय में से न बचावे, तो जब आपके घर में बीमारी आवे व आपके कुटुंब किसी संकीर्णता में प्रविष्ट हो जावे, तो उसके निकास के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। आपको एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। अपनी थैली की डोरी कसके पकड़े रहकर अपनी पत्नी को देने से इनकार करना कोई प्रशंसा की बात नहीं है।
आप अपनी पत्नी को प्रति सप्ताह कुछ पैसा दे कि वो उसे अपनी इच्छा अनुसार व्यय कर सके। कदापि आपने उसके उचित स्थान को न समझकर उसे मान्यता नहीं दी है, इसी कारण आपने उसे अपने पास पैसा रखने का अवसर नहीं दिया। आपकी पत्नी के पास भी एक उत्तम समतुल मस्तिष्क है। अपनी पत्नी को अपनी आय का एक भाग दीजिए, ये उसी का हो जिसे वो अपनी इच्छा अनुसार व्यय कर सके। अपने उपार्जित धन को जैसा वो चाहे अपने विवेक के अनुसार खर्च करने दिया जाना चाहिए। यदि वो कुछ रकम बिना नुक्ताचीनी के खर्च कर सके तो उसका मानसिक भार अधिकतर उतर जाएगा।